क्या किसानों को अपनी पैदावार के लिए बेहतर कीमतें मिल सकती हैं या उन्हें हमेशा एक मुख्य दर्शक बनकर रहना होगा। कमोडिटी एक्सचेंज वह बाजार है जहां वस्तुओं की खरीद फरोख्त का कारोबार होता है। डेरिवेटिव मार्केट की मदद से कोई भी किसान अपनी पैदावार की भविष्य के मूल्य को कुछ हद तक निश्चित कर सकता है। फिर किसान इस लाभ से क्यों वंचित रहे? ये उनको न केवल वित्तीय लाभ देगा बल्कि असल बाजार में होने वाली भावों की अस्थिरता से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। NCDX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला पावर्ड बाय मनी कंट्रोल में आपका स्वागत है। कपिल देव जी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट NCDX, और मैं मनी कंट्रोल से शिशिर अस्थाना इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे कि किसान कैसे कमोडिटी एक्सचेंज का लाभ उठा सकते हैं। कपिल जी, इक्विटी मार्केट्स ने जिस हिसाब से जो जोर पकड़ा है वो हमने कमोडिटी मार्केट में नहीं देखा, इसकी वजह क्या है आपके हिसाब से?
देखिए शिशिर जी, आपकी बात सही है कि कमोडिटी मार्केट इंडिया में वो ग्रोथ नहीं ले पाया जो कि हम इक्विटी मार्केट में हमने देखा है, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट के जो फंक्शन हैं, जो पर्पज़ हैं, वो डिफरेंट हैं। इक्विटी मार्केट जहाँ पर एक इन्वेस्टर क्लास और एक कैपिटल जनरेशन के लिए मार्केट समझा जाता है, कमोडिटी मार्केट का जो इकोनॉमिक रैशनल है वो प्राइस एंड रिस्क मैनेजमेंट है। एंड प्राइस एंड रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है कि कौन लोग हैं जो उन कमोडिटीज़ को ट्रेड कर रहे हैं, दे बिकम द प्राइम यूज़र ऑफ दैट मार्केट। उसके बाद सेकेंडरी कौन है जो उस कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं, तो पूरा जो वैल्यू चेन है उस कमोडिटी का, उनको इस मार्केट में आना जरूरी है। तो वो अवेयरनेस आई थिंक अभी इतनी नहीं है कि लोग उसको उस तरीके से देख रहे हैं और इस मार्केट को एज ए हेजिंग टूल और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक कारण है। दूसरा, ऑन एंड ऑफ अगर आप देखेंगे तो इंडियन कमोडिटी मार्केट जो पॉलिसीज़ हैं उनसे काफ़ी डिस्टर्ब रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो स्टेबिलिटी नहीं है जो कि इक्विटीज़ मार्केट में रहती है, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की जो प्राइस सेंसिटिवनेस है, और हमने देखा है कि बहुत सी कमोडिटी बैन होती है या बहुत सा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरीके से चेंज होती है, या फंडामेंटली कुछ ऐसा मेजर चेंज आ जाता है कि मार्केट उसको एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो एक कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस आई थिंक की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ये सब होने के बाद आई थिंक कम्युनिटी मार्केट डेफिनेटली एक अगले लेवल पर पहुँचेगा।
तो आपके हिसाब से मतलब फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे कम्युनिटी मार्केट को बढ़ावा मिल सके?
देखिए, अगर हम बात करें तो ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, जो रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग है, अगर आप आज देखेंगे कि पूरा जो सेक्टर है एग्री सेक्टर इज़ डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी एंड ह्यूज प्राइस वॉलेटिलिटी एंड रिस्क। सो जो रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आप देखेंगे जितने भी अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सारे जो प्रोसेसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं, हेज फंड हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करते हैं अपने प्राइस और हेजिंग के लिए। वो सेम रिस्क मैनेजमेंट हमें यहाँ लाना पड़ेगा, और उसके लिए आई थिंक हमें एक बहुत बड़े लेवल पर अवेयरनेस क्रिएशन करने की ज़रूरत है, और जितने भी सेगमेंट हैं उस कम्युनिटी के उनको जोड़ने की इस मार्केट से ज़रूरत है, ताकि मोर लिक्विडिटी, मोर वॉलेटिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो। सो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट है, चाहे रेगुलेटर है, और चाहे एक्सचेंजेस हैं, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बट बिकॉज ये अभी ग्रोइंग मार्केट है, और जो हमारा एग्री सेगमेंट है या एग्री प्रोसेसर्स हैं वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड हैं, फार्मर्स स्मॉल हैं, इंडस्ट्रीज स्मॉल हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है धीरे धीरे, तो इन सबको आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो इसमें आप जैसे आपने बताया किसान का क्या रोल है, क्या वो अपना प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं कमोडिटी एक्सचेंज से?
देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है। जब भी हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करते हैं तो वायदा बाजार की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि किसान के लिए इसमें क्या है। देखिए, किसान हमारे यहाँ एक बहुत छोटा यूनिट है जो कि इतनी बड़ी पैदावार करता है। अगर आप देखेंगे तो जो मोस्टली हमारे किसान हैं वो तो छोटे हैं या स्मॉल या मार्जिनल फार्मर आते हैं, जो लैंड साइज़ है बहुत छोटी है, तो जो कैपेबिलिटी है डायरेक्ट किसान की वो लिमिटेड है इस सिस्टम को आके यूज़ करने की। बट अगर आप देखेंगे सिस्टम के बेनिफिट, इट्स नॉट ओनली ट्रेडिंग, मैं उस टॉपिक पे बाद में आऊँगा। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल जो चीज़ है एक किसान के लिए, वो है इन्फॉर्मेशन। और अपने मार्केट में वो इन्फॉर्मेशन लेवल नहीं है कि अगर किसान को ये डिसीज़न लेना है कि मेरे को कौन सी फसल लगानी है, कौन सी फसल का अगला सीज़न प्लान करना है, कब बेचना है, कब स्टोर करना है, तो वो सब चीज़ों के लिए एक प्राइस इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होता है, जो कि आई थिंक इनफॉर्मल मार्केट में नहीं है। बट एक्सचेंज आने के बाद एटलीस्ट फार्मर्स के पास एक रेफरेंस प्राइस है कि उसको देख के और अपने जो इन्फॉर्म्ड है डिसीजन है उसको वेरी अच्छे तरीके से ले सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो किसान के लिए है कि उनके पास एक नेशनल लेवल बेंचमार्क प्राइस अवेलेबल है। दूसरा जो रीज़न है कि किसान इस मार्केट को यूज़ कर सकते हैं क्या, सो आई विल से वेरी पॉजिटिवली कि यस, किसान इस मार्केट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जस्ट टू शेयर कि आज एक्सचेंज के पास लगभग 200 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब हम बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक कलेक्टिव कंपनी होती है जो कि फार्मर मिलकर बनाते हैं, वही इसके स्टेक होल्डर होते हैं और वही इसके मैनेजमेंट होते हैं। और एक कंपनी बनाने के बाद वो सब चीज़ों में, चाहे उनका जो इनपुट मटेरियल रिक्वायर्ड है या आउटपुट की मार्केटिंग है, वो कलेक्टिव करते हैं, तो उससे उनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है, बार्गेनिंग कैपेसिटी या नेगोशिएशन जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। 200 FPO अभी तक एक्सचेंज के सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं, मोर देन 200, जो रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज टू 250,000 फार्मर्स। दे हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग, डिलीवरी देना शुरू भी किया है, डिलीवरी लेना भी शुरू किया है, और आई थिंक अब उस मार्केट को बहुत अच्छे से उन्होंने समझना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और हमें एक्सचेंज का बहुत एफर्ट्स है कि और ज़्यादा से ज़्यादा FPO को हम करें, और आई थिंक रेगुलेटर जो सेबी है उसका बहुत हमें सपोर्ट है इस चीज़ के लिए, नाबार्ड का बहुत अच्छा सपोर्ट है, एंड देर आर डिफरेंट इंटरमीडिएट एजेंसीज हु आर ऑल्सो वर्किंग टू प्रमोट फार्मर्स टू बी ऑन बोर्ड एंड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म एफिशिएंटली।
तो इसमें फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है मतलब एक्सचेंज में आने के बाद, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस?
यस, वी हैव मैनी सक्सेस स्टोरीज। अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कहाँ से हुआ है, सो इट्स फ्रॉम द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज़ बिहार। बिहार के मेज फार्मर ने हमारे फीचर्स को सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया है, क्योंकि आज हम जब बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, बट दिस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द बिहार, देन सोयाबीन के फार्मर ने यूज़ किया है, एंड बहुत अच्छे से इन्होंने एफिशिएंटली यूज़ किया, जहाँ पे फर्स्ट किसान को कॉन्फिडेंस है कि आज मैं एक नेशनल प्राइस पे बेच रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है किसान के पास कि उसका प्राइस लोकल प्राइस नहीं है, वो खुद डिसाइड कर रहा है कि किस प्राइस पे मेरे को बेचना है। सो आई थिंक किसान के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये डिसाइड करना है कि किस प्राइस पे मैं बेचूंगा। तो जो आज तक किसान की डिपेंडेंसी थी वो मार्केट के ऊपर थी, नाउ ही हैज़ कैपेबिलिटी टू टेक हिज ऑन डिसीजन एट व्हाट प्राइस ही नीड टू सेल, एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन के द्वारा हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे किसान ने 10-15% का एक्स्ट्रा रिटर्न फीचर्स को यूज़ करने के बाद लिया।
तो इसमें काफ़ी हद तक योगदान NCDFs का भी रहा है, मतलब ट्रेनिंग देने में।
यस, एक्सचेंज के अपनी एक अलग टीम है जो कि सिर्फ फार्मर के साथ इंगेज करती है और FPOs के साथ इंगेज करती है, उनके साथ एक बहुत बड़े लेवल पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें ना सिर्फ एक्सचेंज, हम बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यूज़ करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं किसानों को इसके लिए।
सर, जैसे आपने कहा फॉरेन में हेज फंड्स और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, क्या इंडिया में ये हैं या आने की संभावना है?
देखिए, इंडियन कमोडिटी मार्केट इज़ इन इट्स जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड मार्केट। अगर आप देखेंगे तो 15 साल पहले शुरू हुआ था, ये बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ मार्केट में, मार्केट का वॉल्यूम ग्रो हुआ, उसके बाद बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन ये मार्केट स्टेबल हो गया, एंड आई थिंक अवेयरनेस इज द मेन थिंग, एंड यस पार्टिसिपेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, जिस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सो अभी अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटरी सेबी ने अलाउ किया कि एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज EFE, तो EFE मीन्स ऐसे जो भी फॉरेन लोग हैं जो इंडिया में या तो एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और उनका किसी भी तरह का एक्सपोजर है इंडियन के कमोडिटी मार्केट में, वो आके यहाँ पे हेज कर सकते हैं अपने एक्सपोजर को। सो दैट ऑलरेडी हैज़ बीन अलाउड बाई रेगुलेटर, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी नेसेसरली एंड इम्पोर्टेंट वेन वी आर इन ए ग्लोबल इकोनॉमी एंड मार्केट्स आर ओपन, एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू ईच अदर मार्केट, दैट विल गेट मोर ट्रांसपेरेंसी एंड लिक्विडिटी एंड डेप्थ टू द मार्केट, विच इज़ आई थिंक द की ऑफ एनी सक्सेसफुल कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। दूसरा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को भी अलाउ किया है, जहाँ पे वो आके विथ सम लिमिटेड कैपेसिटी दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन दैट। ऑलरेडी कुछ AIF ने ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया है, और रेगुलेटर फर्दर रिव्यू कर रहा है कि किस तरीके से हम और उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। एक्सचेंज इज ऑल्सो वर्किंग, म्यूचुअल फंड्स और PMS भी अलाउ किया गया है। तो अगर आप देखेंगे दिस फ्यूचर्स मार्केट इज़ बेसिकली स्ट्रगलिंग टू, कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट की अगर हम बात करें तो स्ट्रगलिंग टू गेट द मोर एंड मोर रिटेल क्लाइंट्स। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर फ्यूचर्स मार्केट की, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मार्केट बिकॉज इट्स ए सीजनल मार्केट हियर, एंड मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल रिमेन्स लोकल। अगर आप देखेंगे जितनी भी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज ट्रेड हो रही हैं, चाहे सोयाबीन है और ग्वार है या कैस्टर है या स्पाइसेस हैं, दे आर लोकल इन नेचर। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर, एंड जितने भी फंडामेंटल है वो डोमेस्टिक रहते हैं। सो फंडामेंटल कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड दोज इन्फॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल टू रिटेल बिकॉज दैट मच ऑफ अवेयरनेस इज स्टिल नॉट क्रिएटेड दैट पीपल हैव दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक दे डू हैव फॉर अदर एसेट क्लासेस। उसके लिए वी नीड मोर ऑर्गेनाइज प्लेयर हु कैन पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स टू क्रिएट रिसर्च, टू जनरेट रिसर्च, generate fundamentals, take well informed decision. So I think mutual fund and PMS definitely will help. क्योंकि अगर आप देखें इक्विटीज मार्केट में म्यूचुअल फंड्स आने के बाद एक पूरा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. एंड आई थिंक जब म्यूचुअल फंड कमोडिटीज़ को भी इसी डायरेक्शन से देखेंगे थ्रू म्यूचुअल फंड वी एक्सपेक्ट लार्ज नंबर ऑफ रिटेल पार्टिसिपेंट्स विल कम इनडायरेक्टली दैट विल हेल्प दिस मार्केट. थर्डली रिसेंटली रेगुलेटर ने बैंक जो ब्रोकिंग एंटिटीज़ है उनको भी अलाउ किया है. सो इंडिया में अगर आप देखेंगे बैंकिंग सिस्टम इज द सिस्टम विच सर्व्स टू ह्यूज लेवल इन टू द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज और उनके पास बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है जो कि अभी तक कनेक्ट नहीं थे फ्यूचर्स मार्केट से क्योंकि वो अलाउड नहीं थे कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए. तो रेगुलेटर ने वो किया है एंड दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग ऑन बोर्ड टू द एक्सचेंज डिफरेंट एक्सचेंजेस एंड दे हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग एज वेल विद फ्यू ऑफ द एक्सचेंजेस एंड विद इन एग्री ऑल्सो दे हैव स्टार्टेड. सो दैट विल ऑल्सो फर्दर लीड टू मोर लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड रीच टू दिस मार्केट. एंड सो आई थिंक ऑल दिस एफर्ट्स गोइंग टू हेल्प दिस मार्केट गोइंग फॉरवर्ड.
तो NCDX की तरह से सर आगे आप लोग का अवेयरनेस प्रोग्राम के कुछ प्रोग्राम है कुछ चार्ट आउट किया है आप लोग ने?
NCDX और NCDX IPFT ट्रस्ट अगर हम बात करें तो इज ओनली एंगेज्ड इन क्रिएटिंग अवेयरनेस इन टू द डिफरेंट सेगमेंट. जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी हेजिंग और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट एज ए कॉन्सेप्ट इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है तो उसके ऊपर हमारा फोकस है जिसमें हम डिफरेंट जो सेगमेंट हैं चाहे वो फार्मर्स है वो फार्मर्स के साथ हम एन नंबर ऑफ इवेंट्स करते हैं जहाँ पे हम FPOs को जाके मिलते हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं 1-to-1 उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में लेके जाते हैं लाइक बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बर्ड नाबार्ड के साथ हमारा एसोसिएशन है जहाँ पे हम लाके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एज एन ट्रेड एंड डिफरेंट वैल्यू चेन के पास हम लोग पहुँचते हैं उनके बीच जाके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उनको समझाते हैं. तो एक्सचेंज का अगर आप देखेंगे तो मेन फोकस हमेशा क्रिएटिंग मोर एंड मोर अवेयरनेस मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट दिस हेजिंग एंड प्राइस रिस्क कॉन्सेप्ट सो दैट वी विल कीप ऑन डूइंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स.
थैंक यू कपिल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया NCDX और उनके रोल और कमोडिटी एक्सचेंज के लिए. धन्यवाद.
थैंक यू शिशिर जी.